सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं सिद्धादद्धष्टमला विशुद्धबुद्धिये लत्थ सौवत्था तिहुवनशिरसे हरया पश्यन्तु भडारया सर्वे तिहुवनभवनपसर्य पच्छक्खवबोहकिरणपरिवेढो उयो वियणत्थवणो अरहन्तदिवाय रोजयौ तिरयणखगणिहाय णुत्तारियमोहसेणशिरणिवहो आयिरियराउपशिवौ परिवालिय भवियजियलो अन्नानन्दयारे अणोरपारे भमन्त भवियाणम् उज्जोजेहि कौ पश्यन्तु सया उवच्छाया दुहतिवति सा विनडिय तिहुवन भवियाण सुठुरायेण परिठवियाधम्मपवा सुवजलवाणपयाणेन सन्धार्यशीलहरा उत्तार्यचिरपमाददुःशीलभरा साहूजयन्तु सर्वे शिवसुहपः सण्ठियाहु निगलियभया। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धौला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। नौवीं पुस्तक जो चतुर्थ खंड वेदना खंड, उसमें कृति अनुयोग द्वार की चर्चा चल रही है और उसमें हम पृष्ठ संख्या 127 पर आ गए, 127। प्रश्न पूछा था कि ये कर्ता की प्ररूपणा क्यों कह रहे हैं। ग्रंथ के आदि में जो 6 बातें बताई जाती है उसमें से कर्ता की बात हो रही थी, अर्थकर्ता और ग्रंथकर्ता। उसमें अर्थकर्ता भगवान महावीर है तो उनका द्रव्य क्षेत्र काल भाव से प्ररूपणा उनकी कर दी उन्होंने। उसके लिए पूछा था शंकाकार ने कर्ता की प्ररूपणा क्यों की जाती है, तो उसको उत्तर में कहा था ग्रंथ की प्रमाणता को बतलाने के लिए कर्ता की प्ररूपणा की जाती है। ये बात कौन कह रहे हैं, किसने ग्रंथ बनाए हैं, अभी अर्थकर्ता की तो बात हुई, अब ग्रंथकर्ता की बात चल रही है। ग्रंथकर्ता यानी गणधर देव, क्योंकि जब जब शास्त्र स्वाध्याय शुरू होता है तो आदि में कहते हैं कि अस्य मूल ग्रंथकर्ता रहा श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथकर्ता गणधर देवा। तदुत्तर है उसके पश्चात, उसके अनुसार जो ग्रंथ रचना करने वाले हैं वो गणधर देव है, और फिर आचार्यों की परंपरा से हमारे तक वो बात आ गई है। ये प्रमाणता को बतलाने वाली बात है, उसका ओरिजिन क्या है, कहाँ से ये बात आई है, किसने उसकी रचना की है, तो जो वीतरागी जीव है उन्होंने ये बात बताई है, जो सर्वज्ञ है उन्होंने बताया है, और उसकी रचना करने वाले भी कैसे हैं उसका भी हम वर्णन देखेंगे। इसलिए कर्ता का भी स्वरूप बताया जाता है और कर्ता के स्वरूप के अनुसार ग्रंथ की प्रमाणता कहेंगे। लौकिक में भी हम देखते हैं किसी विशिष्ट व्यक्ति पर भरोसा करना कि नहीं करना, तो ये बात किसने कही है, हाँ तो ठीक है ऐसा हम कहते हैं ना। और जो बदलने वाला व्यक्ति है, जो कुछ भी कहे तो उसको कोई भरोसा भी नहीं कहे, वही शब्द ऐसे जो जीव है, जो मायाचारी है या जो दूसरों को ऐसे ठगाते हैं उन पर कोई भरोसा भी नहीं करे, भले वो सत्य बात भी कभी कहे दे तो भी। इसलिए यहाँ कहने वाले कौन है, ग्रंथ की रचना करने वाले कौन है, उसकी बात यहाँ विस्तार से बता रहे हैं। देखो अभी उसकी प्ररूपना इस प्रकार है, नीचे का पैराग्राफ 127 पृष्ठ पर, ये सारे अभी गणधरों का वर्णन चल रहा है। यहाँ पर पांच महाव्रतों के धारक, तीन गुप्तियों से रक्षित, पांच समितियों से युक्त, ये हमने कल देखा था, ये 13 प्रकार के चारित्र है, ये तो भावलिंगी संत है ना। आठ मदों से रहित, सात भयों से मुक्त, सम्यक दर्शन को बतलाने वाली ये बात है। अब उनके ज्ञान कैसा है उसको बता रहे हैं। हमने जो चार प्रकार की बुद्धि देखी थी उसमें ये बीज कोष्ठ पदानुसारी व संभिन्न श्रोतृत्व बुद्धियों से उपलक्षित, और हर एक वो बुद्धि कैसी होती है, उसका स्वरूप क्या है, उसका हमने विस्तार से देखा था वर्णन। अब और कैसे, तो अवधि ज्ञानी भी है, तो प्रत्यक्षभूत उत्कृष्ट अवधि ज्ञान से, उत्कृष्ट में ये सर्वावधि वाले हैं ऐसा समझना, उत्कृष्ट में उत्कृष्ट अवधि ज्ञान वही होता है। तो उत्कृष्ट जो अवधि ज्ञान से क्या जानते हैं, असंख्यात लोक मात्र काल में अतीत अनागत एवं वर्तमान परमाणु पर्यंत समस्त मूर्त द्रव्य व उनकी पर्यायों को जानने वाले, असंख्यात लोक में जितने प्रदेश होंगे उतने समय पीछे और उतने ही समय भविष्य में और वर्तमान को भी, इतने काल में किसको जानते हैं, परमाणु तक के पुद्गलों को, यानी कोई पुद्गल ऐसा नहीं रहा कि उनके वो जानने के बाहर है। सूक्ष्म सूक्ष्म तो परमाणु है, परमाणु तक को जानते हैं, तो सभी स्थूल स्कंधों को तो जानेंगे ही जानेंगे, वो प्रत्यक्ष जो अवधि ज्ञान है उसके द्वारा जानते हैं। उसके लिए वह सामने इंद्रियों के द्वारा, जैसे हम सामने कोई पदार्थ है तो उसको जानते हैं, वो भी उसके कुछ अंश में उसको ग्रहण करते हैं जैसे इंद्रियों के द्वारा, ऐसा नहीं है। ये प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा बिना इंद्रियों के सहायता से अवधि ज्ञान से इन रूपी पदार्थों को जानते हैं, तो परमाणु तक के पदार्थों को जानेंगे और उनके पर्यायों को भी जानेंगे। उसमें वो भाव भी आया ना, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव सब सबसे वो जानते हैं पुद्गल को। अब उनके कौन कौन सी अन्य भी रिद्धियां होती है उसकी बात चल रही है। तप्त तप लब्धि के प्रभाव से मलमूत्र रहित, दीप्त तप लब्धि के बल से सर्वकाल उपवास युक्त होकर भी शरीर के तेज से दशों दिशाओं को प्रकाशित करने वाले, छठे सातवां उनका भी चलता रहेगा, गणधर भी है मुनि है, तो अकेले छठे गुणस्थान का काल कितना होता है, अंतर्मूर्त होता है, छठा सातवां ही उनका रहेगा, जब श्रेणी चढ़ेंगे तो ऊपर के भी गुणस्थान होंगे उनके। हाँ, उनका वो गणधर का कार्य नहीं चलेगा, गणधर नहीं रहेंगे, यानी अभी अरिहंत अवस्था प्राप्त करेंगे, क्योंकि श्रपक श्रेणी का काल कितना है, थोड़ा है। ऐसे कोई विधि करनी नहीं पड़ती कि चलो अभी मैं गणधर नहीं हूँ, चलो ये पद आप संभालो, ऐसे कोई बात नहीं होती। वहाँ आचार्य भी जो होते हैं, त्याग करना है ना क्या, वो तो आप यहाँ अंतरंग में लीन हो जाएंगे। ऐसे जैसे हम बाहर गांव जाते हैं और सब निपटा लेते काम, ऐसा थोड़ी उनका कुछ। हाँ, आचार्य तो हैंड ओवर करते भी, और ऐसे भी होगी ना आचार्य पद में भी। वो अभी ये सब ख्याल में आ गया कि मरण है नजदीक, तो दूसरों को किसी को आचार्य बनाएंगे भी। देखो सर्वौषधि लब्धि के निमित्त से ये उन्हें ये सारी लब्धियां प्राप्त है, समस्त औषधियों स्वरूप अनंत बलयुक्त होने से हाथ की कनिष्ठ अंगुली द्वारा तीनों लोगों को चलायमान करने में समर्थ, अमृत स्रव आदि रिद्धियों के बल से हस्तपुट में गिरे हुए सब आहारों को अमृत स्वरूप से परिणामाने में समर्थ महालब्धि रूप तप गुण से कल्प वृक्ष के समान अक्षीण महानस लब्धि के बल से अपने हाथों में गिरे हुए आहारों की अक्षयता के उत्पादक। हमने देखा था अक्षीण महानस क्या है, ये मुनि आहार करके जाएंगे और श्रावक ने तो अपने लिए और जैसे अतिथि आते हैं तो ऐसे थोड़ा बनाया है, उसमें से वो अनुद्दिष्ट ऐसा आहार का वहाँ उनका होता है, तो अभी बचे हुए में पूरी चक्रवर्ती की सेना भी जिम जाए तो भी वो फूटता नहीं है, इसलिए अक्षय कहा उसको, अक्षय आहारों की अक्षयता के उत्पादक। अघोर तपरिद्धि के महात्म्य से जीवों के मन वचन एवं कायगत समस्त कष्टों को दूर करने वाले। अघोर यानी शांति, ऐसी कुछ शांति उत्पादक ऐसा लिया था हमने वहां। संपूर्ण विद्याओं के द्वारा सेवित चरण मूल से संयुक्त आकाश चारण गुण से, क्या कहते हैं, समस्त विद्याओं के द्वारा सेवित चरण मूल यानी इनके चरण मूल जो है जिसको पैर कहते हैं, पाद युगल है, उनको समस्त विद्याएं उनकी सेवा करते हैं। जब जब कोई विद्या प्राप्त होती है तो विशिष्ट देव उस विद्या का रक्षण करने वाले हैं, तो वो विद्याओं के द्वारा सेवित, इसलिए ये विद्याएं उनके चरण में स्थित है ऐसा समझना। और कैसे आकाश चारण गुण से सब जीव समूहों की रक्षा करने वाले, आकाश चारण गुण है इसलिए उनके चलने से भी किसी जीव की विराधना नहीं होती, इसलिए कहते समस्त जीव समूहों की रक्षा करने वाले। वचन एवं मन से समस्त पदार्थों के संपादन करने में समर्थ, अणिमादिक आठ गुणों के द्वारा सब देव समूहों को जीतने वाले, तीनों लोकों के जनों में श्रेष्ठ, परोपदेश के बिना अक्षर व अनक्षर रूप सब भाषाओं में कुशल, सभी भाषाओं का ज्ञान है, किसी ने सिखाया नहीं है, है? और वो भी अक्षर रूप भाषा और अनक्षर रूप भाषा सब भाषाओं में कुशल, समोसरण में स्थित जनमात्र के रूप के धारी होने से हमारी भाषाओं से हम को ही कहते हैं, इस प्रकार सबको विश्वास कराने वाले। ये दो कामरूपित्व या बहुरूपित्व वो भी ऐसी भी विद्या है तो लोगों को लगता है रे हमारी भाषा में समझा रहे हमको, वो बोलेंगे किसी भाषा में तो अनेक रूप के ऐसे धारी होंगे, अलग अलग जीवों को लगेगा हमारी भाषा में हमें समझा रहे। तथा समोसरणस्थ जनों के कर्ण इंद्रियों में अपने मुंह से निकली हुई अनेक भाषाओं के सम्मिश्रित प्रवेश के निवारक ऐसे गणधर देव ग्रंथ करता है। यानी समोसरणस्थ जीवों के कर्णों में तो उनकी भाषा प्रवेश करेगी, फिर भी इनके बोलने में तो सभी भाषाओं आएगी, ये विशिष्ट वृद्धि है ना इनकी, ऐसे वे ग्रंथ करता है। देखो गणधरों का इतना विस्तार रूप से सभी लब्धियां इनके प्राप्त है, हमने देखा रिद्धियां जो है, ऐसे गणधर देव ग्रंथ करता है क्योंकि ऐसे स्वरूप के बिना ग्रंथ की प्रमाणता का विरोध होने से धर्म रसायन द्वारा समोसरण के जनों का पोषण बन नहीं सकता। धर्म रसायन कभी नाम सुना है आपने? आयुर्वेद में रसायन नाम की एक औषधि होती है, वो क्या कार्य करती है? हाँ हम यानी वो तो हमेशा युवा रखती है, बुढ़ापा नहीं आने देती, रसायन कहलाते हैं। अमर तो नहीं कह सकते क्योंकि मरण तो होगा ही जिसका जो जितनी आयु है, परंतु रसायन नाम लंबी आयु भी नहीं कह सकते, युवा अवस्था रहती है उसके कारण, वृद्धावस्था टल जाती है, इसको रसायन कहते हैं। पहले ऐसी ऐसी औषधि तैयार करने वाली विद्याएं भी थी और बनाते भी थे ऐसे कोई। इसलिए वहां धर्म रसायन कहा, और धर्म रसायन के द्वारा जीवों का पोषण करना, ये बात बताएं। यहाँ उपयुक्त गाथा ये गणधरों के बाबत में कि उनके कौन कौन सी रिद्धियां होती है उसकी बात अभी बताएंगे, फिर दोबारा गाथा के द्वारा। बुद्धि तव व्यूवणो सही रस बल अखीण सुसरतादि ओहि मण पज्जवे हिय हवंती गण बालया सहिया। गणधर देव बुद्धि तप विक्रिया औषधि रस बल अक्षीण सुस्वरत्वादि रिद्धियों तथा अवधि एवं मनपर्य ज्ञान से सहित होते हैं। अब वर्धमान जिनके तीर्थ में ग्रंथकर्ता को कहते हैं, फिर यहाँ 39 नंबर का हम देखेंगे। पंचेवत्थिकाया छज्जीवनिकाया महवया पंच अठय पवयनमादा सहे वो बंद मोखोय। पांच अस्थिकाय, ये अस्थिकाय किसको कहना है मालूम है? हाँ हाँ, पंच अस्थिकाय, हाँ वही तो पूछा ना। पांच अस्थिकाय काल द्रव्य को छोड़कर अन्य जो पांच द्रव्य है उन्हें अस्थि काय क्यों कहा? काय यानी बहु प्रदेशत्व को यहाँ काय कहा है, एक से अधिक प्रदेशी है। वैसे पुद्गल परमाणु है तो एक प्रदेशी, परंतु बहु प्रदेशी होने की उसमें क्षमता है। पुद और गल स्कंद रूप होता है उसको भी पुद्गल कहते हैं, तो इस अपेक्षा उसको भी अस्थि काय में ले लिया। ऐसे जीवास्थिकाय, पुद्गलास्थिकाय, धर्मास्थिकाय, अधर्मास्थिकाय और आकाश अस्थि, तो क्यों काल की अस्थि है कि नहीं है? अस्थि है, परंतु वो एक प्रदेश या अप्रदेशी भी कहने में आता है। एक प्रदेश बहु प्रदेश नहीं है, इसलिए उसको कहीं कहीं अप्रदेशी भी कहेंगे, परंतु अप्रदेश का अर्थ उसको प्रदेश नहीं है ऐसा नहीं समझना। अनेक प्रदेश नहीं है, उसकी अस्थि भी है और उसको जो द्रव्य है तो उसको अपना क्षेत्र भी होगा ही, इसलिए एक प्रदेश उसका क्षेत्र है, परंतु उसके बहु प्रदेश नहीं है, एक एक, हाँ एक एक प्रदेश वाला है, इसलिए उसमें कायपना यानी बहु प्रदेशीपना उसमें नहीं पाया जाता। इसलिए काल को छोड़कर, काल यानी द्रव्य काल की बात है, काल द्रव्य की बात है, समय की नहीं। तो समय को कितने प्रदेश होंगे? समय कितने प्रदेशी होगा? हाँ, आप क्या कहते हैं, समय को प्रदेश होगा कि नहीं होगा? पहले में पहले मालूम नहीं, हाँ नहीं पक्का नहीं है उनका निर्णय नहीं है। हाँ क्या कहते हैं मंजू तैयार? व्यवहार काल की बात कर रहे हैं हम, समय व्यवहार काल है, वो कितने प्रदेश वाला होगा? हाँ असंख्यात कहते हैं, आप क्या कहते हैं? एक क्यों? देखो हमने क्या देखा था, जितना क्षेत्र द्रव्य का उतना ही उसके गुण का और उतने ही उसके पर्याय का। तो समय एक काल द्रव्य की पर्याय है, तो हाँ, तो वो भी एक प्रदेश ही होगी। हम ऐसी चर्चा नहीं करते ना, जैसे हम देखते हैं ना ज्ञान गुण कितना है, जितना जीव है असंख्यात प्रदेश है उतना ज्ञान गुण है, तो केवल ज्ञान की पर्याय कितनी बड़ी है, वो भी असंख्यात प्रदेश है। जीव की जितनी अवगाहना है उतनी ही है, वो भले जानने का क्षेत्र उसका भले सब हो, लोक भी और अलोक भी है, परंतु केवल ज्ञान उसका विस्तार कितना है, ज्ञेयों के विस्तार की बात नहीं है, केवल ज्ञान कितने क्षेत्र में, जो जीव का क्षेत्र है वही ज्ञान का क्षेत्र है, जीव के क्षेत्र के बाहर ज्ञान तो फैला नहीं है, ख्याल है ना। तो यहाँ ये पांच अस्थिकाय, छह जीव निकाय यानी छह द्रव्य। अच्छा जीव निकाय यानी छह काय, छह काय जीवनिका यानी छ काय, छ काय यानी पांच स्थावर और त्रस, उसको षट जीव निकाय का बराबर है। पांच महाव्रत, आठ प्रवचन माता, इसका अर्थ मालूम है? हाँ, पांच समिति और तीन गुप्त, इसको आठ प्रवचन माता कहा है। यानी ऐसे भी कितने मुनि होते हैं कि जिनको अधिक विस्तार नहीं है ग्रंथों का पता, परंतु ये आठ प्रवचन माता का उन्हें ज्ञान होता ही है, मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए। तो पांच समिति और तीन गुप्ती संबंधी उनका जो ज्ञान है, हाँ होता ही है, आठ प्रवचन माता तो वो तो आवश्यक बात है। आगे लिखा है देखो, अर्थात पांच समिति और तीन गुप्ती तथा सहेतुक बंध और मोक्ष, उक्त पांच अस्थि कायादि क्या है? ऐसे सौधर्म इंद्र के प्रश्न के संदेह को प्राप्त हुए 500 शिष्यों से सहित। अभी पहले में पहले क्या कहते हैं, सौधर्म इंद्र ने क्या प्रश्न पूछा, उक्त पांच अस्थि कायादि क्या है मेरे? अब कहते हैं 500 शिष्यों से सहित, तीन भ्राताओं से वेष्टित, मान स्तंभ के देखने से ही मान से रहित हुए, वृद्धि को प्राप्त होने वाली विशुद्धि से संयुक्त। हम हर एक विशेषण को बाद में देखेंगे, ये तो सब लंबी लिस्ट चल रही है अभी। वर्धमान भगवान के दर्शन करने पर असंख्यात भवों में अर्जित महान कर्मों को नष्ट करने वाले, जिनेंद्र देव की तीन प्रदक्षिणा करके पंचमुष्टियों से अर्थात पांच अंगों द्वारा भूमि स्पर्श पूर्वक वंदना करके, एवं हृदय से जिन भगवान का ध्यान कर संयम को प्राप्त हुए, भगवान के सामने दीक्षा ली ना, जिन्हें दीक्षा ली, विशुद्धि के बल से अंतर्मूर्त के भीतर उत्पन्न हुए समस्त गणधर के लक्षणों से संयुक्त। अभी जो हमने गणधर के लक्षण देखे, अंतर्मूर्त के भीतर उनके प्रकट होते समस्त लक्षण, तथा जिन मुख से निकले हुए बीज पदों के ज्ञान से सहित ऐसे गौतम गोत्र वाले इंद्रभूति ब्राह्मण द्वारा अभी ये वाक्य तो अगले पेज तक चलेगा, अभी जो विशेषण है किसके द्वारा क्या हुआ वो तो बाद में देखेंगे। पहले मैं पहले यहाँ गणधर की बात बताई, और वो भी कौन से गणधर? इंद्रभूति, उनका गोत्र कौन सा था? गौतम, तो इसलिए गौतम गणधर भी कहते हैं, उसी को इंद्रभूति भी कहते हैं। तो इंद्रभूति, अग्निभूति और वायुभूति तीन भाई थे ना, और हरेक के 500 शिष्य थे। और जब इन्होंने मुनि दीक्षा ली तो सभी शिष्यों सहित वो आए थे वहां। तो क्या कहते, पहले में पहले सौधर्म इंद्र का जो प्रश्न है, पांच अस्थि कायादि क्या है, ये सौधर्म इंद्र ने जाना था कि 66 दिन तक वाणी नहीं खीरी है, तो गया था वो इंद्रभूति के पास और फिर जाकर प्रश्न पूछा ये पांच अस्थि कायादि क्या है। सौधर्म इंद्र को कोई प्रश्न नहीं था, वो तो सम्यक दृष्टि है, ख्याल है ना। तो उन्हें तो पांच अस्थि काय अगर पता नहीं होते तो वो सम्यक दर्शन के धारी हो ही नहीं सकते थे, तो उन्होंने प्रश्न क्यों पूछा? ये समोचरण में पूछने वाले प्रश्न की बात नहीं है। जब अवधि ज्ञान से जाना कि इस गणधर के पद के योग्य कौन है यहाँ पर, तो अवधि ज्ञान में आए वो इंद्रभूति है, तो फिर वहां जाकर पूछा ये पांच अस्थि काय क्या है, यहाँ लिखा ना पंच, ये पांच शिकाय छह जीव ने काय महव्य वगैरह वगैरह बंध मोक्ष। ये जब ऐसा प्रश्न पूछा पांच अस्थिकाय अधिक क्या है, यानी ये सब क्या है, पांच अस्थिकाय छह द्रव्य सात तत्व वगैरह वगैरह ये क्या है, ऐसा अगर पूछा तो उसका संदेह निर्माण हुआ, अरे हम तो जानते नहीं है। तो किसको पूछा अभी है? 500-500 शिष्यों से, तीन भ्राताओं से वेष्टित, अभी ये इंद्रबुद्धि का वर्णन चल रहा है। ये तीन भ्राता है और हर एक अपने अपने 500-500 शिष्यों सहित है, और कैसे ये इंद्रबुद्धि? अब वो संदेह उत्पन्न हुआ तो बता, ये पूरी स्टोरी नहीं बताई इसमें, तो चलो मैं आपके गुरु से ही बात करूंगा। तो वो इंद्र के साथ आया, तो मानस स्तंभ के देखने से ही हमने देखा था, वो बाहर से समोचरण में प्रवेश करते तो विधि वाले महामार्ग जो बीच में है, तो सामने मानस स्तंभ दिखता है। तो मानस स्तंभ के देखने से ही मान से रहित हुए, मान गल गया वहां। वृद्धि को प्राप्त होने वाली विशुद्धि से संयुक्त, ये विशुद्धि लब्धि बहुत बढ़ रही है अभी, विशुद्धि बढ़ रही है ना, कैसी? वृद्धि को प्राप्त होने वाली विशुद्धि, विशुद्धि अभी यहां अनंत गुणी बढ़ रही है। फिर वर्धमान भगवान के दर्शन करने पर असंख्यात भवों में अर्जित महान कर्मों को नष्ट करने वाले, महान यानी अनेक, महान यानी वो महान संख्या लेना उसमें, कर्म महान नहीं है महान शब्द संख्या के रूप में भी आता है ना, अनेक कर्मों को नष्ट करने वाले, यानी वहां मान गल गया वहां उनका। वे तो कहां से आए थे? गृहित मिथ्यात्व में से आते ही मानस समय देखते ही मान गल गया, वो कोई सम्य दृष्टि थे नहीं। और अभी सम्य दर्शन भी प्राप्त करेंगे, मुनि अवस्था लेंगे, इतनी सारी रिद्धियां एक अंतर्मूर्ति में प्राप्त करेंगे, कैसा पुरुषार्थ है? और कोई शास्त्र तो पढ़े नहीं, भगवान की वाणी जो सुनेंगे उसमें से उनकी यहाँ ज्ञान अपने से होता है, कहते ना वहां तो बीज बीज पदों का ज्ञान होता है उसमें से, और बाकी इतनी 12 अंगों की रचना वो उनके सहज वो ज्ञान में आ जाते हैं, पदों के ज्ञान से वो सारा ही आगे पीछे का सब सब जान लेते हुए। तो क्या कहते, देखो ऐसा आता है गणधर के बारे में कि पूर्व भाव में वो द्रव्यलिंगी मुनि थे, और तब तो सम्यक तो हुआ नहीं था, क्योंकि ये तो कुछ अभी मिथ्या हमने देखा था ना, वैदिक थे, गृहित मिथ्यात्व में थे, और वहां से चलकर आए तो समोचरण में देखकर वो, फिर वो पूर्व भाव की जो कुछ देशना वगैरह, अभी भगवान की देशना कहाँ मिली है? भगवान की वाणी तो तब छूटेगी जब वो महाव्रत धारण करेंगे, उसके पहले वे भावलिंगी हो गए ना, उसके पहले उनकी ये सब रिद्धियां प्रकट हुई है, दीक्षा वहीं धारण की उन्होंने, परंतु अभी भगवान की वाणी नहीं छूटी है। भगवान के दर्शन मात्र से उनके जो कुछ वहां पहले के कर्म नष्ट हो गए वगैरह वगैरह बातें आती है। तो मान गल गए आदि जो है वो तो सम्यक तो की भी प्राप्ति हुई, मुनिधर मुनि भी मुनिपद भी अंगीकार किया, और इतनी सारी रिद्धियां भी प्राप्त हुई उनके, तो तभी काम नहीं हुआ था सम्यक तो का, अभी आकर हो गया। देशना भी कहां मिली उनके वो तो डायरेक्ट वाणी खीरेगी, वाणी खिरने के बाद सम्यक हुआ ऐसा तो नहीं कह सकते, मिथ्या दृष्टि के निमित्त से वहां तो नहीं खिरेगी है ना, गणधर जो है वो तो अभी ले रहे सारे, हाँ बिल्कुल एक से सातवा, हाँ पूर्व भव की देशना वहां काम करती है वही तो, परंतु उसमें सामने जिनबिंब भी देखा, मानस स्तंभ में देखा, फिर जाके साक्षात भगवान के दर्शन हुए, तो विशुद्धि इतनी बढ़ी उनकी उसमें, अभी ये तो डिटेल नहीं कहेंगे ना, करण लब्धि कब हुई क्या हुआ वो तो इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी बड़ी बड़ी स्थूल स्थूल बातें कहेंगे, जैसे 3 घंटे का पिक्चर है आपका मूवी देखते हैं तो उसमें तो कोई बड़ी बड़ी घटनाएं तो कहेंगे, छोटी छोटी सब नहीं कहेंगे ना। तो देखो वर्धमान भगवान के वो दर्शन करने के हो गया, द्विजनेन्द्रदेव की 3 प्रदक्षिणा करके पंचमुष्टियों से, यहाँ क्या लिखा है, ती पदायनम करिए पंचमुष्टिये वंदीय, पंचमुष्टि से वंदना करके ने 5 अंगों के द्वारा भूमि स्पर्श पूर्वक वंदना करके, पंचांग नमस्कार जिसको 5 अंग जो है, हाँ एवं हृदय से जिन भगवान का ध्यान कर संयम को प्राप्त हुए, हृदय से यानी जैसे भगवान का स्वरूप है ऐसा अपना भी स्वीकार किया ना और संयम प्राप्त कर लिया, मुनि दीक्षा तो ले ली उन्होंने और फिर ध्यान करते ही संयम को प्राप्त हुए, सातवां गुण स्थान प्रकट हुआ, विशुद्धि के बल से मुहूर्त के भीतर उत्पन्न हुए समस्त गणधर के लक्षणों से संयुक्त वहां विशुद्धि इतनी बढ़ गई कि एक मुहूर्त में ही ये सारी ही उनके रिद्धियां प्राप्त हो गई। गणधर के लक्षण जो अभी अभी हमने पढ़े थे, इतनी सारी रिद्धियां, इतना बुद्धि वगैरह, वो सब उनके वहां प्रकट हो गए, मनपरे ज्ञान वगैरह सब प्रकट होगा वहां पर। तथा जिनमुख से निकले हुए बीज पदों के ज्ञान से सहित ऐसे गौतम गोत्र वाले इंद्रभूति ब्राह्मण द्वारा, अभी यहां तक तो वो इंद्रभूति ब्राह्मण कैसे थे उसका वर्णन, अभी ये जो गणधर है उनके द्वारा अब क्या क्या रचना हुई उसको बता रहे हैं। पहले में पहले अंगों के नाम बता रहे हैं, हमें क्या 12 अंग है ना, तो उसके नाम कहेंगे। तो पहला जो आचार अंग है, दूसरा सूत्र कृतांग, तीसरा स्थानांग, चौथा समवायांग, पांचवा व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग, छठा ज्ञातृधर्म कथांग, सातवा उपासकाध्ययनांग, आठवा अंतकृत दशांग, नौवा अनुत्तरोपपादिक दशांग। पहले इसकी चर्चा हुई थी ना हमारी, कौन से उसमें क्या क्या वर्णन आता है। दसवां प्रश्न व्याकरणांग, ग्यारहवां विपाक सूत्रांग और बारहवां दृष्टिवाद अंग। इन 12 अंगों तथा ये तो अंग कहलाते हैं और जो बाकी है उसको अंग बाह्य कहते हैं। हमने पहले ये हिसाब लगाया था ना कि इतने इतने अक्षरों का एक पद होता है, तो कितने होते हैं 1634 करोड़ 83 लाख 7888, बराबर है ना। हाँ, इतने अक्षरों का एक पद होता है। अभी टोटल अक्षर कितने हैं, द्वादशांग के कुल अक्षर कितने हैं, अपुनरुक्त अक्षरों की बात है, तो हमने 31-1 इतना देखा था, इकट्ठी में एक कम। इकट्ठी किसको कहते हैं, वो पनट्टी गुना पनट्टी, पनट्टी स्क्वायर हुआ उसको बादल कहते हैं और बादल के स्क्वायर को इकट्ठी कहते हैं, उसमें से एक माइनस कर दो तो ये संख्या बड़ी है कि वो संख्या बड़ी है, वो बड़ी है ना। ये तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिजिट वाली है और वो 20 डिजिट वाली होगी, तो 31-1 इसको पदों से भाग देंगे तो ये पूर्ण संख्या आएगी और ऊपर कुछ बचेंगे जिसका पूरा एक पद नहीं हो सकता है, ऐसे अक्षर बचेंगे तो उसमें से अंग बाह्य श्रुतों की रचना होगी, क्योंकि 12 अंगों के मिलकर कितने पद होते हैं, तो 112 करोड़ कुछ है वो। हाँ? तो ये जो जितने पद जितने अक्षर रहे उसमें से जो अन्य जो 14 जो अंग बाह्य श्रुत कहा उसकी रचना होती है। अब उसके नाम यहाँ बता रहे, ये 14 पूर्वों की बात नहीं है, 14 पूर्व थे दृष्टि अंग उसमें भी आ गए, उसी में आ गए दृष्टिवाद अंग में। हाँ, अंग बाह्य को प्रकीर्णक कहते हैं। ये अंग बाह्य क्यों कहा, क्योंकि जो फुल फिगर आ गई पदों की उसमें से तो अंग बने, अब पूरे 1634 करोड़ वगैरह वगैरह इतने अक्षर नहीं है तो उसमें से जो कुछ कम है उसमें से ये 14 प्रकीर्णक कहो या 14 अंग बाह्य श्रुत की रचना हुई है। अब देखते हैं, तथा अभी यहाँ भी ये 14 हो गए। सामायिक चतुर्विंशति स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, वैनयिक, कृतिकर्म, ये सब मुनियों के जो आवश्यक वगैरह होते हैं, तो इसमें ये सारी बातें बताइए। दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, कल्प्य व्यवहार, यहाँ कल्प कहा है पर कहीं कहीं कल्प्य भी कहते, कल्पाकल्प, महाकल्प, पुंडरीक, महापुंडरीक, निषिद्धिका, इन अंग बाह्य 14 प्रकीर्णकों की। अब ये गणधर द्वारा इनकी यानी 12 अंग और अंग बाह्य श्रुत इनकी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में कब रचना हुई उसकी भी बात बता रहे। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में युग के आदिम प्रतिपदा के पूर्व दिन में रचना की, भगवान की वाणी खीरी ना तभी उसकी रचना भी की, तो कब की? श्रावण के कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा जिसको एकम कहते हैं, हमारी भाषा में आषाढ़ कृष्ण एकम, कल बात हुई थी ना, हम आषाढ़ कृष्ण कहेंगे तो हिंदी भाषी को उसको श्रावण कृष्ण कहेंगे। वो दिन क्या है? केवल ज्ञान हुआ उस दिन के, और भी कुछ महत्ता है कि नहीं? पहले वो 66 दिन पहले हुए, परंतु ये तो उनकी वाणी खीरी, दिव्य ध्वनि खीरी, तो उस दिन और भी कुछ हुआ था, लिखा है ना, हमने क्या देखा, क्या लिखा है? युग के आदिम प्रतिपदा, युग का प्रारंभ इसी दिन होता है और इसी दिन दिव्य ध्वनि भी खीरी थी। युग का है नहीं, वो पंचम काल के नहीं, युग का प्रारंभ जो हुआ था, चौथा काल वगैरह जो प्रारंभ हुआ था, युग का प्रारंभ इस बार अभी इस समय होता है अष्टमी को। ये अष्टमी नहीं, तीर्थ तो शुरू हुआ ही हुआ, परंतु ये युग की भी पहला दिन है, युग का प्रारंभ होने का पहला दिन होता है। युग ने जब भी काल परिवर्तन होते हैं उसमें भी इस दिन को यहाँ से शुरू करते हैं। कैलेंडर नहीं, पूरा तुम्हारा चौथा काल, पांचवा काल वगैरह जो काल की शुरू, ये तो आप अभी की बात कर रहे हैं। आदिनाथ के बाद भी जब चौथा काल शुरू हुआ था तो भी ये युग का प्रारंभ इस दिन से होता है हमेशा। नहीं नहीं नहीं, आषाढ़ कृष्ण, कृष्ण शुक्ल ने कृष्ण अष्टानिका के बाद पहला दिन ये युग का प्रारंभ लिखा है। चौथे युग का प्रारंभ कब होता है? ये इसी दिन होता है और उसी दिन भगवान की वाणी की रीति। पूर्व दिन में रचना की थी कि डबल हुआ? हाँ, सभी तीर्थंकरों के तीर्थ में ऐसी ही रचना होती है, 12 अंग होते हैं और अंग बाह्य श्रुत भी होते हैं, क्योंकि एक तीर्थंकर के उपदेश में और दूसरे में कोई वेरिएशन होगा, ऐसा तो बन नहीं सकता है? तो वही 12 अंग हमेशा ही वही होगी। नहीं, उसमें ये जो है ना सामायिक छदोपस्थापना, उसमें डिफरेंस है, क्योंकि वो कथन का भेद है। अभेद रूप से कहो तो सामायिक, और उसी का भेद का कथन करो तो छदोपस्थापना, इसलिए वहाँ, और दोनों को मिलकर एक ही गिना है, तो वहाँ ऐसा कथन में विस्तार करके समझाया था, बाकी उसमें और कुछ भेद नहीं है। पहले और अंतिम तीर्थंकरों के समय में ये ऐसा भेद करके उसका कथन किया था। अतएव इंद्रभूति भट्टारक वर्धमान जिनके तीर्थ में ग्रंथ करता हुए कहा भी है, वासस्य पढ़म मासे पढ़मे पक्षम मिसावणे बहुले पाड़िवद पूव दिवसे तिथुपत्ति दुअभिजिम्मी। वर्ष के प्रथम मास व प्रथम पक्ष में, ये वर्ष यहीं से आरंभ करते हैं, ये वर्ष का आरंभ यहां से होता है। श्रावण कृष्ण प्रतिपदा के पूर्व दिन में अभिजित नक्षत्र में तीर्थ की उत्पत्ति हुई, यानी वर्ष का गिनना भी वो यहां से शुरू होता है। जैसे हमने कहा चातुर्मास शुरू हुआ है, वर्षारंभ भी कहते हैं ना, वर्षारंभ यानी वर्षा ने हम वो बरसात की शुरुआत, वो वर्षारंभ वो नहीं, वर्ष का आरंभ। वासस्य पढ़म मास लिखा है ना, ये वर्ष का प्रथम मास कहा, हम वर्ष का प्रथम मास वो महावीर के निर्वाण के बाद गिनते हो, तो उनके पश्चात वहां से हमने गिनना शुरू किया। वीर निर्वाण दिन को हम वो पकड़ के वहां से जो हम प्रतिपदा से वर्ष गिनते हैं, वीर संवत कहेंगे उसको, वो तो उनके पश्चात गिनना शुरू हुआ। शके भी कहते हैं या विक्रम संवत भी कहते हैं, तो उस विशिष्ट व्यक्ति के कारण। अब ये जो हम सन जिसको कहते हैं 2005, वो काहे से गिनना शुरू हुआ, क्राइस्ट के वो उसके अनुसार उसके प्रारंभ हुआ, परंतु वर्ष का प्रारंभ युग का जिसका कहे ना, यानी वर्ष का कहाँ से होता है, ये आषाढ़ एकम को कृष्ण एकम अपनी भाषा में, और यहाँ श्रावण कृष्ण एकम वदी एकम, कृष्ण कहो या वदी कहो एक ही बात, मराठी में वद्य भी कहते, वद्य कहो वदी कहो कृष्ण कहो एक ही बात है। यहाँ से वर्ष का आरंभ होता है। वर्षा का होता होगा कि नहीं होता होगा अलग अलग मुल्कों में, हाँ वो तो चातुर्मास भी प्रारंभ होता है ना यहाँ, हाँ वो तो अष्टानिका के इसी से मेरे ख्याल से, क्योंकि अष्टानिका से हम चातुर्मास गिनना चालू करते हैं। आप में क्या पद्धति है?
हाँ
बराबर है, यही वर्षा का आरंभ है, वर्षा ने वर्ष का आरंभ यहीं पर है, और उस दिन में ही तो ये तो बरसात के दिन होते हैं, इसलिए उनका विहार नहीं होता एक ही जगह, नहीं तो मुनियों के लिए 3 दिन से अधिक नहीं रुक सकते किसी गांव के नजदीक, गांव में तो नहीं गांव के नजदीक भी उनको तो विहार होता रहता है हमेशा ही, परंतु वर्षा ऋतु में बरसात के दिनों में उनका तो विहार नहीं होता, 4 मास तो कहीं जहां है वहीं रुकेंगे, एक्सेप्ट वो परिहार विशुद्धि वाले, वो वर्षा में भी गमन करेंगे तो वो हिंसा का परिहार करते हैं। हाँ वर्षा में भी उनका गमन होता है परिहार विशुद्धि वालों का, चारण वालों का भी होने में कोई, क्योंकि परिहार विशुद्धि वालों को हो सकता है तो चारण वालों का भी होगा, क्योंकि उससे कोई जीवों की हिंसा तो नहीं होती है। हाँ ये आषाढ़ एकम से ही है, हम ये एक अष्टानिका से दूसरे अष्टानिका गिनने में हमारे आसान है ना, अभी हमारा अष्टानिका हो जाएगा, अभी शुक्ल के अष्टमी से शुक्ल के पूनम तक, पूनम के बाद तो यही वो आने वाला है, तो उससे आगे वाला अष्टानिका है जो कार्तिक में आता है ना पूनम तक, और बाद में उनका मार्गशीर्ष शुरू हो जाता है, अपने कार्तिक का ही वद्य पक्ष शुरू होता है, कहने में डिफरेंस है, दिन तो वही है। तो यहाँ वर्षारंभ है ने वर्ष का आरंभ का दिन आषाढ़ से ही गिनते हैं, क्योंकि पूर्णिमा तो पहले अगले यानी प्रीवियस मंथ का एंड समझते हैं, यहां से उनका श्रावण शुरू हुआ। हमें लगता है बीच में कैसे महीने के बीच में से कैसे वर्ष आरंभ हुआ, तो उनके श्रावण की शुरुआत है यहाँ से और यहाँ से वर्ष का आरंभ शुरुआत करते हैं। हाँ, यहाँ उनका उपदेश शुरू हुआ है, परंतु उनके पहले से भी यही दिन था कि जहाँ से वर्ष का आरंभ होता है, वर्ष के आरंभ के दिन में ही उनकी वाणी छूटी है। उनका तीर्थ शुरू हुआ इसलिए इसका वर्ष का आरंभ कहा, ऐसी बात नहीं है। युग का तो अर्थ है 5 साल, परंतु युग का आरंभ है ने वो महावीर स्वामी का तीर्थ काल तो है ही है, परंतु देखो युग के आदिम प्रतिपदा वहां से उनका युग शुरू हुआ वो बात भी है, और हर समय वर्ष का आरंभ इसी दिन शुरू होता है। जैसे भी पांचवे के बाद छठा, छठे के बाद दूसरा, या छठा काल समाप्त होकर पांचवा काल शुरू होगा, तो ये आषाढ़, ये श्रावण वदी एकम को शुरू होता है। हाँ, नया साल यहाँ से शुरू होता है। अब महावीर के बाद हमने नया साल, वो तो हाँ कार्तिक के प्रतिपदा से समझा, वैसा नहीं है। और बाकी महाराज इसमें चैत्र शुक्ल एकम को कहते हैं। परंतु वो जो पहले कृष्ण पक्ष मानने वाले हैं, तो उनका चैत्र कृष्ण तो पहले साल में चला जाएगा, और इस साल में चैत्र शुक्ल एकम तो आधा ही महीना आएगा उनका, तो चैत्र महीना आधा पहले और आधा युग वर्ष के अंत में, ऐसा मानना पड़ेगा उनके अकॉर्डिंगली। इसलिए वहाँ श्रावण कृष्ण एकम को लिया उन्होंने। इस प्रकार उत्तर तंत्र करता ये हुआ ना, नहीं नहीं इसका अर्थ नहीं पढ़ा, ऊपर का पढ़ा था, वर्ष के प्रथम मास और प्रथम पक्ष में, प्रथम मास और प्रथम पक्ष, प्रथम मास यानी श्रावण मास और प्रथम पक्ष यानी कृष्ण पक्ष, श्रावण कृष्ण प्रतिपदा के दिन प्रथम पक्ष में भी पहला दिवस पूर्व दिन में, यानी दिन के प्रारंभ में, पूर्व दिन यानी अर्ली मॉर्निंग, पूर्व दिन में यानी दिन शुरुआत होते ही अभिजित नक्षत्र में तीर्थ की उत्पत्ति हुई, वाणी छुट्टी और अंतर्मूर्ति में उन्होंने रचना भी की, इसलिए वो काल बताया। इस प्रकार उत्तर तंत्र कर्ता की प्ररूपणा की, तंत्र कहो या उसका ग्रंथ कर्ता कहो, एक ही बात है। अब उत्तरोत्तर तंत्र कर्ताओं की प्ररूपणा करते, उत्तरोत्तर ने ये तो मूल कर्ता हुए, अभी उसके आगे जो परंपरा चली आ रही है उसकी बात अब करेंगे, यानी कौन कौन से बीच बीच में आचार्य हुए, कौन कौन से अन्य श्रुत केवली हुए, उसकी बात करेंगे। वही इस प्रकार है, कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात्रि के पिछले भाग में अतिशय महान भगवान महावीर के मुक्त होने पर, अभी महावीर का निर्वाण कब हुआ उसकी बात है, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी जिसको हम अश्विन कृष्ण चतुर्दशी और उसकी पिछली रात्रि ने हम अमावस की सुबह लेते हैं, है ना? रात्रि का पिछला भाग यानी अभी रात्रि समाप्त होने को आई है और अभी दिन, हाँ, सूर्य उगने ही वाला है, उस समय को लेना इसको। अतिशय महान भगवान महावीर के मुक्त होने पर केवल ज्ञान की संतान को धारण करने वाले गौतम स्वामी हुए, उनके मुक्त होने पर केवल ज्ञान जिनको उत्पन्न हुआ है। अब केवल ज्ञान की संतान क्यों कहा, क्योंकि अभी क्रम से एक एक को केवल ज्ञान होता जाएगा, अनुबद्ध केवली भी कहते हैं, जैसे साकल है ना एक के पीछे एक, वैसे भी इनको केवल ज्ञान हुआ है। जब ये मुक्त हो गए तो सुधर्म स्वामी को केवल ज्ञान होगा, सुधर्म स्वामी मुक्त हो गए वो तब जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, ऐसे ये अनुबद्ध केवली है। तो ये गौतम स्वामी हुए, 12 वर्ष तक केवल विहार से विहार करके गौतम स्वामी के मुक्त हो जाने पर लोहार या आचार्य, मैंने सुधर्म स्वामी कहा, लोहार या आचार्य केवल ज्ञान परंपरा के धारक हुए, यानी वो लोहार्य हुए। इनके बाद लोहार्य नाम के आचार्य हुए। 12 वर्ष केवल विहार से विहार करके लोहार्य भट्टारक के मुक्त हो जाने पर जम्बू भट्टारक केवल ज्ञान की परंपरा के धारक हुए। 38 वर्ष केवल विहार से विहार करके, देखो गौतम स्वामी तो 12 वर्ष, लोहार्य भी 12 वर्ष, और जम्बू स्वामी 38 वर्ष तक विहार हुआ उनका। जम्बू भट्टारक के मुक्त हो जाने पर भरत क्षेत्र में केवल ज्ञान परंपरा का विच्छेद हो गया। ये अंतिम केवली कहलाते हैं जम्बू स्वामी। इस प्रकार भगवान महावीर के निर्वाण को प्राप्त होने पर 62 वर्षों से, हमने देखा ना 12, 12, 24 और ये 38, 62 वर्षों से केवल ज्ञान रूपी सूर्य भरत क्षेत्र में अस्त हुआ। तो ये 62 वर्ष में 3 केवली हुए। कौन कौन से? गौतम स्वामी, लोहार्य और जम्बू स्वामी। विशेष यह है कि उस काल में सकल श्रुत ज्ञान की परंपरा को धारण करने वाले विष्णु आचार्य हुए। सकल श्रुत ज्ञान की परंपरा ने पूरा ही 12 अंग और वो प्रकीर्णक सबको धारण करने वाले, सबके ज्ञाता ऐसे विष्णु आचार्य हुए। पश्चात अविच्छिन्न संतान स्वरूप से नंदी आचार्य, अपराजित, गोवर्धन और भद्रभाऊ ये सकल श्रुत के धारक हुए। इनको श्रुत केवली कहते हैं। उसमें से पहले विष्णु आचार्य, फिर नंदी आचार्य, अपराजित, गोवर्धन और भद्रभाऊ। भद्रभाऊ का नाम सुना होगा आपने, अंतिम श्रुत केवली कहते हैं उनको। परंपरा से ना आगे आगे वाले उनके शिष्य इस तरह से भद्रभाऊ तक ये सकल श्रुत के धारी थे, संपूर्ण श्रुत के धारी। इन 5 श्रुत केवलियों के काल का योग, योग यानी उसकी टोटल 100 वर्ष है, यानी 100 वर्ष में 5 श्रुत केवली हुए। श्रुतु हुआ है, श्रुत करना, वो तू का उकार श्र को देना। बासठ वर्ष तक तो केवल ज्ञानी रहे, उसके पश्चात और 100 वर्ष में, हमने देखा था ना, जैसे कोई आचार्य उनके शिष्य ऐसी परंपरा चली, तो 100 वर्ष में 5 श्रुत केवली हुए। पश्चात भद्रभाहु भट्टारक के स्वर्ग को प्राप्त होने पर भरत क्षेत्र में श्रुत ज्ञान रूपी पूर्ण चंद्र अस्तमित हो गया। पूर्ण चंद्र यानी ज्ञान को यहाँ चंद्र की उपमा दी है, अब उसमें ज्ञान की कटौती होगी, क्रम से ज्ञान भी घटता जाएगा आगे। अब भरत क्षेत्र अज्ञान अंधकार से परिपूर्ण हुआ। विशेष इतना है कि उस समय 11 अंगों और विद्यानुवाद पर्यंत दृष्टिवाद अंग के भी धारक विशाखाचार्य हुए, यानी 11 अंग और ये 10 पूर्व के धारी विशाखाचार्य हुए। विशेषता यह है कि इसके आगे के 4 पूर्व उनका एक देश धारण करने से विच्छिन्न हो गए। 10 पूर्व तक तो उनको ज्ञान था, और आगे के जो 4 पूर्व है उसका एक देश का ही ज्ञान था, तो वो विच्छिन्न हो गए, उसका ज्ञान नहीं रहा पूरा। पुनः वह विकल श्रुत ज्ञान, अभी श्रुत ज्ञान पूर्ण नहीं है, विकल कहा ना, उसमें से थोड़े थोड़े कुछ ज्ञान रह गया, वह विकल श्रुत ज्ञान प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जय, नाग, सिद्धार्थ, घृतिसेन, विजय, बुद्धिल्ल, गंगदेव और धर्मसेन इन आचार्यों की परंपरा से 183 वर्ष आकर विच्छिन्न हो गया। यानी ये कौन से थे? 11 दशांग, ये 11 अंग वाले, एकादशांग जिसको कहते हैं, 11 अंग और 10 पूर्वधारी। दशा पूर्वधारी कहते तो उसमें पहले के 11 अंग है, समझ लेना। पश्चात धर्मसेन भट्टारक के स्वर्ग को प्राप्त होने पर, यह अंतिम धर्मसेन हो ना, आचार्यों की परंपरा ने वो शिष्य परंपरा समझना, उनके शिष्य वो ऐसे 183 वर्ष में इतने हो गए 11। हाँ, धर्मसेन भट्टारक के स्वर्ग को प्राप्त होने पर दृष्टिवाद प्रकाश के नष्ट हो जाने से 11 अंगों और दृष्टिवाद के एक देश के धारक नक्षत्राचार्य हुए। अभी दृष्टिवाद का एक देश ही रहा, वहां तो 10 पूर्व तक के ज्ञानी थे, वो अभी नहीं रहा, उसमें से कुछ कुछ ज्ञान रह गया। तदनंतर वह एकादशांग श्रुत ज्ञान जयपाल, पांडु, ध्रुवसेन और कंस इन आचार्यों की परंपरा से 220 वर्ष आकर विच्छिन्न हो गया, यानी 220 वर्ष में 5 एकादशांग धर। आगे पूर्व का ज्ञान नहीं रहा, बीच बीच में कुछ रहा होगा, इसलिए वो तो पूर्ण ज्ञान किसी को नहीं रहा, तो 11 अंगों का ज्ञान रह गया। 220 वर्षों में 5 एकादशांग धर हो गए। तत्पश्चात कंसाचार्य के स्वर्ग को प्राप्त होने पर 11 अंग रूप प्रकाश के विच्छिन्न हो जाने पर सुभद्राचार्य आचार अंग के और शेष अंगों एवं पूर्व के एक देश के धारक हुए। आचार अंग के धारक और अन्य अंग और पूर्व में से कुछ कुछ ज्ञान, इसलिए एक देश ज्ञान कहा। यानी अभी एक अंग का पूरा ज्ञान और बाकी तो थोड़ा बहुत। तत्पश्चात वह आचार अंग भी यशोभद्र, यशोबाहु और लोहाचार्य की परंपरा से 118 वर्ष आकर क करना उसका विच्छिन्न हो गया, यानी आचार अंग का भी पूर्ण ज्ञान अभी नहीं रहा। तो 118 वर्ष में 4 आचारांग धर हुए, धर यानी उसके ज्ञानी। इस सब काल का योग 683 वर्ष होता है। पहले 62 केवल ज्ञान, फिर 100 है वो सकल श्रुत ज्ञान के धारी यानी श्रुत केवली, 183 जो है वो एकादशांग, हाँ 11 अंग और 10 पूर्वधारी, 220 जो है वो एकादशांग धर है और 118 है वो आचारांग धर। ये 683 हुए। पुनः इसमें से 7 मास अधिक 77 वर्षों को कम करने पर 5 मास अधिक 605 वर्ष होते हैं। यह वीर जिनेन्द्र के निर्वाण प्राप्त होने के दिन से लेकर जब तक शक काल का प्रारंभ होता है उतना काल है। देखो क्या क्या, ये तो 683 दे 683। अब उसमें से 77 वर्ष और 7 मास कम करो तभी वो शक शुरुआत हुआ, शक का काल शुरू हुआ, शक नाम का राजा हुआ था ना, तो उसका काल प्रारंभ हुआ। इस काल के 605 वर्ष और 5 माह होने का कारण यह है, इस काल में शक नरेंद्र के काल को मिला देने पर वर्धमान जिनके मुक्त होने का काल आता है, कहा भी है। देखो ऊपर हम गाथा पढ़ेंगे, पंचय मासा पंचय वासा छच्छे वहोंति वाससया सग कालेण यसहिया थावे यौवो तदो राशि। 5 मास 5 वर्ष और 600 वर्ष होते हैं, इसलिए शक काल से सहित राशि स्थापित करना चाहिए, यानी शक काल सहित राशि में इतने और मिला देना तो महावीर निर्वाण का काल आता है। अन्य कितने ही आचार्य भी, जो अन्य अन्य जो कोई मान्यताएं है, कथन आते हैं आचार्यों के, उसको भी यहाँ बताया है। अन्य कितने ही आचार्य वीर जिनेन्द्र के मुक्त होने के दिन से 14,793 वर्षों के बीत जाने पर शक नरेंद्र की उत्पत्ति को कहते हैं। यानी उनके अंदाज से या उनके अभिप्राय से भी कितना काल बीत चुका पंचम काल का, क्योंकि इतने के बाद शक हुआ और शक संवत जो है वो उसमें और मिला देना, इतना काल बीत गया उनके मत के अनुसार। उन्होंने क्या कहा है वो उसकी पुष्टि के लिए कहा भी है, गुत्तिपयत्थ भयाइम चौदसरयणाय समय कंताइम परिणिउदेजिनिंदे तोरज्जम सगणरिंदस। सगणरिंदे ने शक नरेंद्र शक राजा ते परिणिउदे जिनेंद्र, जिनेंद्र का परिनिर्वाण होकर ये बात आती है, तो उसके लिए क्या कहते हैं देखो, वीर जिनेंद्र के मुक्त होने के पश्चात इतने इतने साल बीतने पर शक राजा हुआ, तो कितना काल बीता, तो क्या कहा गुप्ति यानी गुप्ती पदार्थ, गुप्ती कितनी होती है तीन, ये संख्या नहीं बताई तो उसके लिए शब्द बताए, तो गुप्ती तीन होती है, पदार्थ नौ है, भय सात है और चौदह रत्न है, और अंकों की उल्टी गति होती है ना, तो चौदह को पहले लिखना 14,793 वर्षों के बीच जाने पर शक नरेंद्र की उत्पत्ति को कहते हैं, सॉरी इतने बीतने पर शक नरेंद्र का राज्य हुआ। महावीर निर्वाण के बाद इतने वर्ष बीत जाने पर शक राज्य का काल शुरू हुआ, ऐसा कितने ही आचार्य कहते हैं। अन्य कितने ही आचार्य इस प्रकार कहते हैं, जैसे वर्धमान जिनके मुक्त होने के दिन से 5 मास अधिक 7,995 वर्षों के बीच जाने पर शक नरेंद्र के राज्य की उत्पत्ति हुई, और उसके लिए गाथा प्रस्तुत करते हैं। सत्तसहस्राणव सद पंचाणौदी स पंचमासाय ऐकंतावासाणम जैया तैया सगोपत्ति। सगोपत्ति ने शक की उत्पत्ति, शके ने शक राजा, जब 7,995 वर्ष और 5 मास बीत गए, आगे ऊपर गाथा के साइड में लिखा है ना, ऊपर वर्ष कहे और नीचे 5 है ने 5 मास लिखे बीत गए, तब शक नरेंद्र की उत्पत्ति हुई। ये तीन अलग अलग मत बता रहे हैं, ये तो हाँ हम तो क्या 2600 वर्ष हो गए ना अभी, हाँ अब ये क्या कह रहे हैं, इतने 14,000 हुए, कोई कहते हैं ये 8,000 और कुछ हो गए, है ना, तो ये अलग अलग तीन मत है। इन तीन उपदेशों में एक होना चाहिए।
देखिए बात ऐसी है कि जैसा शिवाजी राजा हो गया ये तो नक्की है, लेकिन उसके कभी मृत्यु हुई और कभी पैदा हुआ वो भी नक्की नहीं है, खास करके मृत्यु कब हुई उसके बारे में शंका है, यानी दो मत है तीन मत है, ऐसा इनके बारे में शक की कब से शुरुआत हुई, शक राजा कब था, इसके बारे में अलग 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 प्रकार से बता रहे, तो अभी आगे की बात रही, इस तीन में से एक कोई सत्य होना चाहिए, अभी आप समझ सकेंगे।
तीन मत है उसमें से एक ही कोई सत्य होगा। कौन सा वाला 14,000 वाला, इन तीन उपदेशों में एक होना चाहिए, तीनों उपदेशों की सत्यता संभव नहीं है क्योंकि इनमें परस्पर विरोध है, इस कारण जानकर कहना चाहिए। यहाँ से आगे प्रकृति प्ररूपणा करते हैं, प्रकृति ने भी जो अपना विषय चल रहा है अभी बीच में वो काल की बात आ गई, तब भी अपना विषय आगे बढ़ेंगे। लोहाचार्य के स्वर्गलोक को प्राप्त होने पर आचारांग रूपी सूर्य अस्त हो गया, देखो यहाँ पहले पृष्ठ पर आचारांग धर हो गए थे ना चार, उनमें से लोहाचार्य अंतिम थे, और वहां तक हमने टोटल 683 वर्ष देखा था। अब उनके बाद क्या हुआ तो वो आगे बता रहे हैं। आचार अंग वाले चार थे, उनका भी अस्त हो गया। इस प्रकार भरत क्षेत्र में 12 सूर्यों के अस्तमित हो जाने पर शेष आचार्य सब अंग पूर्वों के एक देश भूत, सभी अंग और पूर्वों का एक देश ज्ञान रह गया। किसी भी अंग का या पूर्व का कंप्लीट ज्ञान नहीं रहा। एक देश भूत पेज्य दोष और महाकम्म पैड़ी पाहुड़ा आदि कों के धारक हुए। ये दो जो नाम बताए उसके धारक हुए। इस प्रकार प्रभाणीभूत क्या प्रमाणीभूत, प्रमाणीभूत चाहिए। ये मूल अंग और पूर्वों में से भी बचते बचते कुछ ज्ञान शेष रहा उसकी बात चल रही है। ये प्रमाण क्यों है उसकी बात चल रही है ना। अभी षटखंडागम तक नहीं आए हम। इस प्रकार प्रमाणीभूत महर्षि रूप प्रणाली से आकर, प्रणाली यानी उसकी उत्तरोत्तर परंपरा, वो प्रणाली कहा। महाकम्म पैड़ी पाहुड़ रूप अमृत जल प्रवाह धरसेन भट्टारक को प्राप्त हुआ। वहां पेज दोष और महाकम्म पैड़ी पाहुड़ ये दो बातें रही गई थी। उसमें से महाकम्म पैड़ी पाहुड़ का ज्ञान धरसेन को था, अंगों में और वो पूर्वों में एक देश ज्ञान था। वो उन्होंने भी गिरिनगर की चंद्र गुफा में संपूर्ण महाकम्म पैड़ी पाहुड़ भूतबलि और पुष्पदंत को अर्पित किया। उन्हें ऐसा विकल्प आया, हमने पहले पढ़ा था कि अभी इसका भी लोप होने जा, क्योंकि लोप होते होते इतना बचा, एक देश बच गया। अब इसका भी कालांतर से लोप हो जाएगा, क्योंकि पहले तो ऐसे ही परंपरा चलती थी ना, वो तो सारे उनके याद रहता था। अब इसलिए उसको लिपिबद्ध कराया। ये साउथ में कहीं कोल्हापुर में वो मुनियों का बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, वहाँ सब इकट्ठे हुए थे सातारा जिले में, तो वहाँ उन्होंने संदेश भेजा लिखकर किसी को ऐसा। तो वहाँ पता चला अभी कि कोई आप में से जो कोई योग्य ऐसे कोई है, ऐसे दो मुझे चाहिए शिष्य। तब उन्होंने इन दो मुनियों को भेजा वहाँ पर। उनके पहले नाम कुछ अलग ही थे, कल बात आई थी किसमें पढ़ी मैंने, इसी में आएगी शायद आगे। तो फिर बाद में उनका भूतबलि और पुष्पदंत नामकरण बाद में हुआ। भूतबलि क्योंकि भूतों ने वगैरह आकर उनकी पूजा की, तो भूतबलि। और पुष्पदंत ने उनके दांत, चार दांत कुछ होते वो सही हो गए, यानी उन देवियां प्रकट होती है ना, उन्होंने देवों ने आकर ठीक किए, तो इसलिए पुष्प के समान दंत, पुष्पदंत नाम हो गया उनका। हाँ, सिमंदर के वहां जाके आए, दिव्य ध्वनि सुनी, तो भी बारह अंग के ज्ञाता कहाँ हुए वे। जिसकी जितनी बुद्धि है उतना ग्रहण करेंगे ना। गणधर तो सब कुछ ग्रहण करते हैं, तो वहीं पर यदि दिव्य ध्वनि के कारण बारह अंग का ज्ञान होता है तो समोसरण के सभी जीवों को होना चाहिए। अब इतने नाम क्यों आए यहाँ पर। ज्ञान की उतनी पर चारण रिद्धि थी उनको, परंतु चारण रिद्धि है इसलिए बुद्धि रिद्धि भी होगी, ये बात कहाँ से, ऐसी बात नहीं। सभी रिद्धियां होती वो गणधरों को होती है। और उन्होंने बिल्कुल जो अभी के जीवों को जो मूलभूत आवश्यक बात, वो तो सबसे पहले प्रतिपादन की ना, ये द्रव्यान योग की बात, समय सार प्रवचन सार, कितनी गहरी बात उन्होंने। और उन्होंने भी वो परिक्रम नाम की टीका लिखी थी षटखंडागम पर। ये नहीं कि वो करना नियोग को ऐसे वो फालतू समझते थे। हम भी जो है ना, अभी हम क्या कहते हैं, शास्त्र छपाओ तो ज्ञान रह जाएगा, छपाने से नहीं रहने वाला। पहले काल में भी ऐसे उसका कोई ऐसा खास ख्याल नहीं किया, पढ़ने में रुचि नहीं हुई, ज्ञान की भी हीनता होते गई। अभी हम भी नहीं पढ़ेंगे तो ये भी नहीं रहने वाला है। हाँ, मंदिर में तो बहुत होते हैं वो, कोई कहते ऐसा ही था ना। मैं मेरे पिताजी के चाचा जी के पास गई मैं, क्योंकि मुझे ऐसा अंदाजा था कि अपना घर बहुत पुराना है और गुजरात से माइग्रेट होके आए हैं, कहीं ना कहीं कुछ शास्त्र का अपना घर में होने चाहिए। तो जाके मैंने सब इंक्वायरी की तो उनके घर में भली बूटी ऐसी भली बड़ी अलमारी और उसमें सारे शास्त्र रखे हुए, कोई देखने वाला भी नहीं। तो देखते पहले तो मैं मुझे रोना ही आ गया कि इतने शास्त्र, इतने रोना है नहीं, दुख से नहीं, आनंद हो गया। तो फिर उसमें से बहुत सारे मैं यहाँ आ गई, उसमें षटखंडागम, ये राजवार्तिक वगैरह बहुत सारे शास्त्र मिले। और उसके पश्चात पूछा और कितने शास्त्र है क्या है, नहीं हम हर साल क्या करते थे, मंदिर में दान देते थे, यहाँ पढ़ने वाला कोई नहीं है, ऐसे लपेट के बांध के दान देना। और मंदिरों में क्या करते थे, वो सारे ऐसे वस्त्रों में लपेट कर बड़े बड़े शास्त्र अलमारी में रखे हुए रहते थे। और मुझे याद है बचपन में हम उनकी आरती भी उतारते थे, गाते भी थे, परंतु उन शास्त्रों में क्या लिखा है कौन जानता है। अभी परसों कोई आए थे पूना के, वो कह रहे थे हम देखने को मांगते हैं क्या है, हमने उनको रिक्वेस्ट की, अरे अपने मंदिरों में तो बहुत पहले प्राचीन शास्त्र है, थोड़ी लिस्ट करके हमको भेजो तो सही, हमें पता तो चले कौन कौन से है शास्त्र। तो कहते मैंने बहुत बार कोशिश की, तो वो तो वहाँ का जो कोई पुजारी है, ये इतने टाइम में आना पड़ेगा, बाकी मुझे टाइम नहीं है, उस टाइम में गया अभी आज नहीं, दूसरे टाइम गए नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, अभी मेरे को टाइम नहीं है, उस फुर्सत नहीं है, ऐसा करके किसी को पढ़ने भी नहीं देता ना, देखने देता है। ट्रस्टी में भी ऐसे चलता है ना वो, तो जिसको किसी रुचि नहीं है और अपने पास क्या अमूल्य ठेवा है, इसको कोई किसी को पढ़ी नहीं है, ये मंदिर किसका, उसमें पढ़ेंगे झगड़ा करेंगे, कौन पहला अभिषेक करेगा, दूध का अभिषेक कौन करेगा पहला, उसमें झगड़ा करेंगे। ये मंदिर में इतने शास्त्र पड़े हैं सैकड़ों, उसकी तो कोई देखने वाला नहीं है। ये कारंजा वालों ने बहुत अच्छा रखा है, एक एक शास्त्र को उन्होंने तो स्पेशलिस्ट को बुलाकर ये सब, उसके भी होते ना लाइब्रेरी का जो कैसे मेंटेन करना, उसके कैसे नंबरिंग करना, कैसे कवर वगैरह, इतनी अच्छी तरह से उसकी हिफाजत की है और बहुत प्राचीन ग्रंथ वहाँ अवेलेबल है। हमने वो त्रिलोक सार वहाँ से मंगाया था ना, बहुत अच्छा रखा है। श्रवण बेलगोला में भी बहुत जगह है, भी किया भी है वहाँ, तो ये प्राकृत की भी बहुत, उसके आगे रिसर्च भी चलती है वहाँ पर प्राकृत ग्रंथों की। ऐसे दो तीन जगह है कि वहाँ पुराने शास्त्र भी, आजकल क्या हुआ लोगों को घर अभी छोटे पड़ने लगे, शास्त्र की अड़चन होने लगी तो निकाल देते हैं, कितने तो रद्दी में बेच देते हैं। तो ऐसे कितने ही लोगों ने जाहिर आह्वान किया है, जिसको नहीं चाहे भेजना है तो हमारे यहाँ भेज दिया, हम उसकी हिफाजत करेंगे। बड़े बड़े उन्होंने ऐसे रखे है, वो अहमदाबाद वाला एक सेंटर है, दूसरा एक वो भावनगर वाले, वो भी वो तो जगह जगह जाके वो जाँच करते, उन्होंने तो बहुत से जगह में जाकर सब सूची तैयार किए, उसकी लिस्ट कौन से ग्रंथ है, कहाँ है, कितने हैं, किन कौन से मंदिर में है, उसकी फोटोकॉपी निकाली है, पांडुलिपि निकाली है, उसके कलर जीरोक्स भी बनाए हैं, बहुत उस पर उनका कार्य चल रहा है। हाँ, उन्होंने तो जर्मनी में भी भेजे, ये सश्रुत साहित्य प्रसारक मंडल ऐसा कुछ है ना वो भावनगर वाला, अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ देखो, ये महाकम्म पयड़ी पाहुड़ का ज्ञान था धरसेन को, तो वहां से दो मुनियों को बुलाकर उनको ये सिखाया। पश्चात नीचे से पांचवी लाइन, श्रुतर रूपी नदी प्रवाह के विच्छेद से भयभीत हुए भूतबलि भट्टारक ने क्या किया, ये श्रुतर रूपी जो नदी है उसका प्रवाह तो अभी अटक जाएगा, विच्छिन्न होगा, नष्ट होगा, इस भय से भूतबलि भट्टारक ने भव्य जनों के अनुग्रहार्थ महाकम्मपैड़ी पाहुड़ का उपसंहार कर, उपसंहार कर यानी उसको भी शॉर्ट में करके षखंड यानी षटखंडागम किए, छह खंड बनाए। अतएव त्रिकाल विषयक समस्त पदार्थों को विषय करने वाले प्रत्यक्ष अनंत केवल ज्ञान के प्रभाव से प्रमाणीभूत, क्या कहते हैं, केवल ज्ञान कैसा है, त्रिकाल विषयक समस्त अनंत पदार्थों को विषय करने वाला है, ऐसे ज्ञान के प्रभाव से प्रमाणीभूत, ये जो उनकी वाणी निकली वैसे ऐसे ज्ञान के प्रभाव से प्रमाणीभूत है, वो ऐसे ज्ञान के साथ उसका निमित्त है। तीर्थंकरों की वाणी में भी निमित्त उनका केवल ज्ञान है, तभी तो वो प्रमाण है। वाणी वाणी जड़ है, बात सही है, परंतु हम बोलते तो हमें हमारा ज्ञान उसमें जितना है वैसा बोलेंगे ना हम। अभी हमारे तो राग भी उसमें मिश्रित है, अकेले ज्ञान से नहीं बोला जाता, यहाँ राग द्वेष के कारण भी उसमें कुछ सत्य असत्य आदि बातें मिली, पर उनका ज्ञान प्रमाण है और उनकी वाणी भी प्रमाण है। और ज्ञान के प्रभाव से प्रमाणीभूत, और दूसरी बात आचार्य रूप प्रणाली से आने के कारण, ये जो परंपरा चली वो आचार्यों की चली, जो पांच महाव्रत के धारी है, सत्य महाव्रत धारी है, और वे भी इतने वीतरागी है, वीतरागी संतों की प्रणाली यानी परंपरा से आने के कारण प्रत्यक्ष व अनुमान से चूंकि विरोध से रहित है, उसमें प्रत्यक्ष भी विरोध नहीं और अनुमान से भी उसमें कोई विरोध नहीं है, अतः यह ग्रंथ प्रमाण है। इस कारण मोक्षाभिलाषी भोवे जीवों को इसका अभ्यास करना चाहिए, यदि अपना कल्याण चाहते हैं तो, ऐसा मोक्ष के अभिलाषियों को इसका क्या फायदा लगता है ना, आत्मा का ध्यान करे हो गया मोक्ष। ये ग्रंथों का अभ्यास, कोई अभ्यास नहीं चाहते, और बस स्थिर हो जाओ और आत्मा में उपयोग लगाओ, लगेगा 24 घंटा। चूंकि यह ग्रंथ स्तोक है, क्या कहते हैं, ऐसा कोई अगर शंका करता है ये तो छोटा ग्रंथ है, 12 अंग का तो इसमें कुछ ज्ञान नहीं है, तो यह ग्रंथ स्तोक है, अतः वह मोक्ष रूप कार्य को उत्पन्न करने के लिए असमर्थ है, ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। क्या हम दलील करेंगे, अरे अभी कहाँ 12 अंक का ज्ञान है, अभी इतना सा तो ज्ञान रह गया है, इतना से ज्ञान से थोड़ी मोक्षवाणी वाला है, मोक्ष तो कितना महान है, और इतने से ज्ञान से हमारा क्या होगा, तो उसके लिए उत्तर दे रहे, ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि अमृत के 100 घड़ों के पीने का फल चुल्लू प्रमाण अमृत के पीने में भी पाया जाता है, अमृत पीने से रोग दूर हो जाता है, है ना? तो 100 घड़े पीने से होगा कि चम्मच भर पीने से होगा, चम्मच भर पीने से भी वो कार्य होने वाला है, अपना प्रयोजन इससे सत्ता है। हाँ, तो कितना शास्त्र पढ़ेंगे तो हमें सम्यक दर्शन होगा, ये बात पूछते ना लोग। तो प्रयोजन भूत तत्वों को जानने से होगा, और वो भी निर्णय करने से होगा। इस प्रकार मंगलादिक 6 की प्ररूपणा करके, ये तो मंगलादि 6 चले अभी तक, पहले मंगल बताया, फिर निमित्त बताया कि शिष्यों के लिए बनाया है, फिर ग्रंथ का प्रमाण बताया, फिर ग्रंथ का कर्ता बताया, और फिर उसके प्रमाणता बताने के लिए वो ग्रंथकर्ता सूत्रकर्ता वगैरह वगैरह उसकी प्रमाणता बताई, ये बातें हुई ना, हमने पहले भी देखी थी। ये यहाँ आया था, ये वचन के अनुसार आया था ना। हाँ, 6 बातें हमने देखी थी ना, मंगल वगैरह वगैरह करके। पेज नंबर कितने पर आया था ये, ये सब हो गए था ना, तभी हमने वहाँ मंगल देखा था। ये सभी ज्ञानों की बात हुई थी, वहाँ मंगल की बात पूर्ण हुई थी, ये चारित्र की रिद्धि उसके बाद। एक मिनट है, अभी मिल जाएगा। ये रिद्धिया हो गई ना सब, उसके वहाँ पर है कारण का भाव। हाँ, मंगल दर्शक, ये पेज नंबर 106-107। देखो 106 पर मंगल बताया, फिर निमित्त बताया, उसके बाद परिमाण बताया, उसके बाद ग्रंथ का नाम। अभी इस ग्रंथ में वेदना अधिकार है ना, तो वेदना ये नाम हो गया। फिर कर्ता बताए और ग्रंथ की प्रमाणता, यानी प्रमाण, ग्रंथ प्रमाण है वो भी बताए। कर्ता की प्रमाणता से वचन की प्रमाणता यहाँ सिद्ध की। ये अभी तक ये प्रमाणता की ही बात चली थी, इसलिए ग्रंथ के शुरू में जो ये छह मंगल आदि छह बातें करने में आती है उसकी प्ररूपना यहाँ समाप्त हुई। इस प्रकार मंगल आदि छह की प्ररूपना करके अभी हम 120 पृष्ठ पर आ गए हैं, 134। वो छपा नहीं ना बराबर ऊपर। प्ररूपणा करके प्रकृत ग्रंथ के संबंध को बतलाने के लिए उत्तर सूत्र कहते हैं। संबंध, ग्रंथ को संबंध बताने, अभी ऊपर हम सूत्र पढ़ेंगे। हाँ, सूत्र पढ़ेंगे अभी। अज्ञेयस पूवस पंचमस वत्थुस चौथो पाहुड़ो कम्म पयड़ी नाम। ये इसके ओरिजिन कहाँ से हुआ है उसको बता रहे हैं। संबंध ने मूल जो 12 अंग और अंग पूर्वज, अंग बाह्य आदि जो होते हैं, उसके कहाँ से इसका कनेक्शन कहाँ से आया है, जो हमने पहले भाग में इसका विस्तार से स्वरूप देखा था, कौन से ग्रंथ कहाँ से आए हैं, फिर दोबारा यहाँ बता रहे हैं। अज्ञेयस पूवस पंचमस वत्थुस चौथो पाहुड़ो कम्म पयड़ी नाम। अभी बाद में इसका अर्थ नीचे देखेंगे, पढ़ेंगे हम। तत्थ इमानी 24 अणियोगदाराणी नादववाणी भवंती कदि वेदनाए पस्से कम्मे पयड़ीसु बंधेन निबंधने पक्कमे उवक्कमे उदये मोखे पुनसंकमे लेसा लेसायम्मे लेसा परिणामे तथेव सादमसादे दिहे रहस्य भवधारणीये तथ पोगलत्ता निधत्तम अनिधत्तम। वो ध करना घ का, निधत्त निधत्त होते हैं ना। निकाचिद निकाचिदम अनिकाचिदम कम्मठिदि पश्चिम खंधे अप्पा बहुगम च सौवत्थ। अब इसका अर्थ हम नीचे पढ़ेंगे, क्योंकि हाँ, मैंने 45 सूत्र में नीचे से दूसरी लाइन है उसमें निधत्त चाहिए, निघत्त हुआ है ना, हाँ, घ के जगह ध करना, निधत्त नाम है। कर्मों का आपने सुना होगा, निधत्त निकाचित वगैरह। अब इसी का अर्थ नीचे लिखा है। अग्रायणी पूर्व की, वो पू व के ऊपर रफार देना, पूर्व। अग्रायणी पूर्व की, ये अग्रायणी नाम कहाँ सुना है? 14 पूर्व में। पहले पूर्व का नाम क्या है? उत्पाद, बराबर है। उत्पाद अग्रायणी वगैरह वगैरह जो है उस पूर्व है, वहां से इसका ओरिजिन है। अग्रायणी पूर्व की पंचम वस्तु के इतने इतने वस्तु, एक एक पूर्व में इतने इतने वस्तुएं होती है। वस्तुएं ने ये जो हमने नाम देखे थे श्रुत ज्ञान के, जो भेद देखे थे पहले में, पहले अनक्षरात्मक थे, उसमें तो पर्याय से शुरू किया था, फिर पर्याय समास, फिर अक्षर, अक्षर समास, इतने इतने अक्षरों के एक पद होते हैं, पदों के बाद संघात होते हैं, संघाति के बाद हमने देखा था ना, हाँ, नहीं नहीं, प्रतिपत्ति था, प्रतिपत्ति के बाद अनुयोग था, अनुयोग के बाद प्रावृतक, प्रावृतक फिर उसके बाद प्रावृत, इस तरह से हमने वे सारे देखे थे। हाँ, तो उसमें अंतिम वस्तु है और वस्तु के बाद पूर्व आता है, तो जो पांचवी वस्तु है उसमें अग्रायणी पूर्व की पांचवी वस्तु, तो वस्तु कहाँ से बनी है, तो उसमें प्रावृत होते हैं, इतने इतने प्रावृत के एक वस्तु, तो उसका नाम कर्म प्रकृति है। ये कर्म प्रकृति प्रावृत का नाम है, वो प्रावृत उस वस्तु का चौथा अधिकार है और वो वस्तु भी पांचवी है, किसमें से, अग्रायणी पूर्व में से। उसमें ये 24 अनुयोग द्वार ज्ञातव्य है। ये प्रावृत है ना, ये प्रावृत में 24 अनुयोग द्वार है, यानी उसके 24 ये अधिकार है, ऐसा हम कहेंगे। उसको अधिकार तो कहते नहीं, अनुयोग द्वार कहते हैं। तो कौन कौन से है, कृति, वेदना, स्पर्श, कर्म, फिर प्रकृति, बंधन, निबंधन, प्रक्रम, उपक्रम, उदय, मोक्ष, संकम, संक्रम चाहिए ना, संक्रम होना चाहिए, हाँ, संक्रम, फिर लेशा, लेशा कर्म, लेशा परिणाम, वहां पर ही साता सात, साता सात का नंबर 16, दीर्घ ह्रस्व, फिर भवधारणीय, वहां पुद्गलात्त, निधत्त अनिधत्त, निकाचित अनिकाचित, कर्मस्थिति, पश्चिम स्कंद और अल्प बहुत्व, ये 24 अनुयोग द्वार है। किसमें से, कर्म प्रकृति नाम का जो प्रावृत है उसमें ये 24 अनुयोग द्वार है। सब ग्रंथों का उपक्रम, निक्षेप, अनुगम और नय, इस प्रकार चार प्रकार का अवतार होता है। यानी ग्रंथों में कौन कौन से बातें पाई जाती है, उपक्रम, निक्षेप, अनुगम और नय। अवतार होना यानी वो ग्रंथ की रचना होना। उनमें उपक्रम्यते अनेन इति उपक्रमः, ये उपक्रमः हुए, उपक्रमः करना, इस निरुक्ति के अनुसार जिस साधन द्वारा नाम व प्रमाणादि कौन से ग्रंथ जाना जाता है वह उपक्रम है। नाम और प्रमाण, इनके द्वारा ग्रंथ को जानना, उसको उपक्रम कहते हैं। यह उपक्रम, ये बातें धवला भाग एक में हमने विस्तार से देखी है। ग्रंथ के शुरू में पहले मंगल आदि 6 बात होती है, फिर ये बातें सारी वहां आई थी, इसी को फिर दोबारा यहाँ बता रहे हैं। यह उपक्रम आनुपूर्वी नाम, प्रमाण, वक्तव्यता और अर्थाधिकार के भेद से 5 प्रकार है। उपक्रम के ये 5 प्रकार है। उनमें आनुपूर्वी उपक्रम 3 प्रकार है। उस दिन हमने आनुपूर्वी की बात की थी, पश्चात अनुपूर्वी वगैरह वगैरह, यथा तथा अनुपूर्वी, दो नाम तो आए थे ना, यानी उस क्रम से कहना, उसको अनुपूर्वी कहते हैं। ये दो लाइन पढ़ते, पूर्वानुपूर्वी, पश्चादानुपूर्वी और यथा तथानुपूर्वी। उद्दिष्ट के क्रम से अर्थाधिकार की प्ररूपणा का नाम पूर्वानुपूर्वी है। शुरू से अंत तक क्रम से कहना, उसको कहते हैं पूर्वानुपूर्वी। हमारे जैसे उद्दिष्ट है, जो कहना चाहते हैं उसको क्रम से कहना, उसको पूर्वानुपूर्वी कहेंगे। विरुद्ध क्रम से की गई प्ररूपणा पश्चादानुपूर्वी कहलाती है। जैसे हमको तीर्थंकरों के नाम बताने हैं और हमने महावीर से शुरू करके आदिनाथ तक बताए, तो ये पश्चादानुपूर्वी। अनुलोम प्रतिलोम क्रम के बिना यानी शुरू से अंत तक या अंत से शुरू तक ऐसे क्रम के बिना जो प्ररूपणा की जाती है उसका नाम यथा तथानुपूर्वी है। कहीं से भी किसी का भी बताना उसको यथा तथानुपूर्वी। उनके अतिरिक्त प्ररूपणा का और कोई चतुर्थ प्रकार नहीं है क्योंकि वह पाया नहीं जाता। बाकी बात हम कल देखेंगे। इसमें जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नवो सदा देतो लोक।